दूसरी ढाल के आठवें आखिरी के छंदों पर चर्चा कर रहे हैं। गृहित मिथ्यात्व की हम लोगों की बात चल रही है और इसमें अभी तक संग्रहित मिथ्या ज्ञान की बात हम लोगों ने कर ली थी। अब गृहित मिथ्या चारित्र की बात आज करते हैं। सेकेंड लास्ट छंद है सेकेंड ढाल का। आई एम रीडिंग इट, वी डिस्कस अबाउट इट इन एंड लूज दिस। जो ख्याति लाभ तू जाति चाह धरी करन ते दाह आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन। दिस इज द 14th छंद। इसके बाद 15 छंद का फर्स्ट हाफ। ये सब मिथ्याचारित्र त्याग, ये इतना मिथ्याचारित्र का वर्णन है। ठीक है, हम लोगों ने मिथ्या ज्ञान में पढ़ा था एकांतवाद दूषित समस्त, और उसमें हम लोगों ने एकांत की और अनेकांत की बहुत लंबी चर्चा करी। देन इन द लास्ट क्लास वी ट्राइड लर्निंग, लास्ट टू लास्ट क्लास वी ट्राइड लर्निंग की ये सारे वेद वगैरह कैसे बने और ये एक छोटी सी बात कैसे एक रूढ़ी बन जाती है और वो सिद्धांत बन जाती है, राइट? तो हमको जो कुछ भी द बेस्ट थिंग अबाउट जैनिज्म इज, ऐसा किसी और धर्म में नहीं होता कि उसमें जो भी ग्रंथ लिखे जाए वो परंपरा से लिखे जाए। प्रॉपर देयर इज अ सीक्वेंस, एक हमारी फ्लो, एंसेस्ट्रल फ्लो हमारा चला। भगवान महावीर के बाद अनुबद्ध केवली हुए, तीन अनुबद्ध केवली, किसी को नाम पता है? पंचम काल में भगवान महावीर के बाद तीन अनुबद्ध केवली हुए, मतलब पंचम काल में हुए।
गौतम ग्रंथ, भद्रबाहु स्वामी और
गौतम पर ये केवली हुए बराबर। इसके बाद सुधर्माचार्य, सुधर्म केवली हुए, सुधर्माचार्य भगवान बने, और एक आखिरी में इनका तो नाम पता होगा, बहुत फेमस है,
मथुरा
जम्बूस्वामी, जम्बूस्वामी। अनुबद्ध केवली किसको कहते हैं? अनुबद्ध केवली
एक को केवल एक मोक्ष गए तो दूसरे को केवल ज्ञान हुआ।
भगवान महावीर को मोक्ष हुआ तो गौतम गर्धर को केवल ज्ञान हुआ, गौतम गर्धर को मोक्ष हुआ तो सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान हुआ, सुधर्माचार्य को मोक्ष हुआ तो जम्बूस्वामी को केवल ज्ञान हुआ। तो इन तीन भगवानों के बीच में केवली की परंपरा नहीं टूटी। जब तक महावीर भगवान थे तब तक गौतम गर्धर आराम से गर्धर थे। द मोमेंट महावीर भगवान गए तो गौतम गर्धर तुरंत केवली बन गए, तो हमारे पास वापस एक केवल ज्ञानी हो। राइट, ये अनुबद्ध केवली कहना है। इनके बाद फिर पांच मुनिराज हुए द्वादशांग के पास। कितने मुनिराज? पांच मुनिराज, विष्णु मुनिराज, नंदी विष्णु मुनिराज, गोवर्धन मुनिराज, भद्रबाहु मुनिराज, ऐसे पांच मुनिराज हुए। ये अनुबद्ध के
आपकी आवाज नहीं आती है अनुभव जी के, मानस कैन यू हियर?
नहीं, मुझे भी डिस्टर्बेंस आ रही है बहुत।
वो सारा ब्रेक होता है।
जस्ट जॉइन बैक। हेलो,
हाँ
इज इट क्लियर नाउ? एनी क्लियरर?
या इट्स बेटर।
ओके ओके. सो व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ, तो जो तीन अनुबद्ध केवली, उसके बाद पांच श्रुत केवली, फिर 11 मुनिराज हुए, 11 अंग 9 पूर्व के धारी, प्रोष्ठिल विशाख, ऐसे करके 11 मुनिराज आदि हुए. तो ऐसे करते करते फिर हमारे अंग पूर्व अंग ज्ञान के धारी बचे, फिर एक अंग के भी धारी नहीं बचे. ऐसे करते करते हमारे धर्षि मुनिराज तक बात आई. उनको एक अंग के एक पार्ट का ज्ञान था, धर्षि आचार्य को. उनको चिंता हुई सबसे पहले कि यार ऐसा चलता रहा तो हमारे ज्ञान तो कम होता जा रहा है, और इतनी बड़ी द्वादशांक का जितना कुछ ज्ञान भी बचा है इसको लिख लेना चाहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं बचेगा. और फिर उन्होंने वहां से दो मुनिराज बुलाए. एक बहुत बड़ा, मुनिराजों का हर 4 साल में एक बहुत बड़ा कैंप लगता था, मीटिंग होती थी मुनिराजों की. सो दैट वाज हैपनिंग एट दैट टाइम. उन्होंने वहां पर पत्र भेजकर ये पूछा कि हमें दो योग्य मुनिराज चाहिए. और फिर पुष्पदंत आचार्य और भूतबली आचार्य, ये उनके ओरिजिनल नाम तो नहीं है बट फेमस नाम यही हुए, बाद में धर्षेन आचार्य ने उनको ये नाम दिए थे. ये दो मुनिराज वहां पर आए और फिर इन्होंने पहला शुद्ध स्कंध, हमारा छठखंडागम ग्रंथ लिखा. अब आप जितने भी ग्रंथ हमारे पढ़ोगे मूल आचार्यों के, तो द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज कि वो कभी इंडिपेंडेंट ऑन देयर ओन आचार्य कुछ नहीं कहते. वो पूर्व आचार्यों की परंपरा से प्राप्त ज्ञान को ही लिखते हैं. तो हमारा जो ज्ञान है वो किसी आचार्य का खुद का मौलिक चिंतवन नहीं है, जो परंपरा से आ रहा है वो वाला ज्ञान है, राइट? तो जैसे कुन कुन आचार्य देव भी बोलेंगे, तो यदि कोई किसी गाथा में सिद्धांत देते हैं, तो ये बोलते हैं कि जैसे कि निज आयु क्षय से मरण हो यह बात जिनवर ने कही. तो कुनकुन आचार्य देव खुद नहीं बोलते कि आयु क्षय से मरण होता है, ये बात जिनेंद्र देव कहते हैं. या फिर गुणभद्राचार्य बोलते कि पूर्व आचार्यों से ऐसी परंपरा चली आई है, वो उनका ऐसा मत है. तो जैन दर्शन में एक तो हमारे ग्रंथों में आचार्यों का नाम नहीं छुपाया जाता, जैसे कि हु रोट गीता नो बडी नोज, हु रोट कुरान नो बडी नोज, हु रोट बाइबल नो बडी नोज, देयर इज नो ऑथेंटिक नेम. किसने वेद लिखे किसी को नहीं पता, बट किसने समय सार लिखा वी नो, किसने गंधर्व महाभाष्य लिखा जिसको अवेलेबल भी नहीं है बट वी नो कि हाँ आचार्य समंतभद्र रोड वन ग्रेट स्क्रिप्चर विच इज नॉट अवेलेबल नाउ. ठीक है, तो इतने अलग अलग ग्रंथ, लेकिन हर एक ग्रंथ का हमारे पास जो अभी अवेलेबल ग्रंथ है ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है जिसके, हाँ, डाउट हो सकता है. जैसे कि पंचाध्यायी के ऑथर के ऊपर बहुत डाउट है कि उसको शायद कुछ लोग मानते हैं अमृत चंद्राचार्य ने लिखा, कोई लोग मानते कि अमृत चंद्राचार्य ने नहीं लिखा. तो बट उस ग्रंथ पर भी पूरी आचार्य परंपरा को देखकर ही हमने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ ये वाले ग्रंथ में जो बातें हैं ये पूर्वाचार्यों से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती है, कुछ गड़बड़ नहीं होती है, इसके लिए वाली बातें सही है, वाला ग्रंथ आचार्य परंपरा का है. और इस कारण हमारे पूरे जैन शासन में अभी तक आप पूर्व से लेके पूरे में कहीं पर भी कुछ भी विवाद नहीं लगता, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगता. आचार्य के मत अलग अलग हो सकते हैं बट जहां पर वो अपना मत रखते हैं वहीं पर ये बोल देते हैं कि दूसरे आचार्य का ये कहना है, तो इन दो मतों को साथ में लेकर चलते हैं, कहीं वो कंट्राडिक्ट नहीं करते हैं. ठीक है, सो दिस इज द एविडेंस. समंत भद्राचार्य ने बोला कि सबसे बड़ा एविडेंस किसी दर्शन को जानने का है तो वह स्ववचन बाधित नहीं होना चाहिए. हे भगवान, स त्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक अविरोधो यदिष्टम पे प्रसिद्धेन न बाध्यते. हे भगवान, वह निर्दोष आप ही हो जो कि युक्ति से मतलब लॉजिक से और शास्त्र से मतलब आगम से अविरोधी हो, कंट्राडिक्ट नहीं करते, और आपने जो कुछ भी कहा है वह प्रसिद्ध से प्रत्यक्ष से वॉट इज अपेरेंट उससे बाधित नहीं होता, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होता. हे भगवान, आप कॉन्ट्रडिक्शन से अलग हो इसलिए आप हमारे लिए प्रमाणिक हो, आप सच्चे हो. बाकी लोग तो कुछ बोलेंगे और कुछ और करेंगे, बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है. ठीक है, तो ये ग्रहित मिथ्यात्व का और अग्रहित मिथ्यात्व में वेर एवर यू फाइंड कॉन्ट्रडिक्शन, लाइक श्वेतांबरों में बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है, वो कॉन्ट्रडिक्शन से, जैसे कि एक घटना आती है, एक थे श्वेतांबर साधु और अपने पंडित जी थे पन्नालाल जी शास्त्री, तो वो मिले होंगे उन्होंने, तो उन्होंने पूछा कि श्वेतांबर ने उन्हें आके बोला कि आप लोग बोलते हो कि वस्त्र को पहने पहने परिग्रही कहलाते हैं, अपरिग्रही नहीं होते, लेकिन तत्पाठ सूत्र में तो आचार्य उमास्वाति, वो लोग उमास्वाति बोलते हैं आचार्य उमास्वामी, तो हम लोग उमास्वामी बोलते हैं, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंस। तत्पाठ सूत्र में तो आचार्य उमास्वाति ने मूर्छा को परिग्रह कहा है, मूर्छा परिग्रह, तो कपड़े पहनने नहीं पहनने से थोड़ी परिग्रह होता है, मूर्छा से परिग्रह होता है, मूर्छा मतलब मोह, और हमारा कपड़ों के प्रति मोह चला गया है, दे सेड दैट श्वेतांबर साधु, राइट। सो व्हाट दिस पंडित जी जो थे वहां पर पन्नालाल जी शास्त्री, उन्होंने बोला हाँ आप सही कह रहे हैं, आपकी मूर्छा चली गई है, जरूर इन कपड़ों को आपके प्रति मूर्छा होगी, तभी आपके बॉडी से चिपके हुए हैं, मतलब इट कैन नॉट वर्क लाइक एदर ऑफ द वेज, मतलब या तो आपको इनके प्रति मुंह है तो आपने इनको पहना है, या फिर कपड़ों ने आपको पहना हुआ है, आपने कपड़ों को नहीं पहना हुआ है। तो फिर उन्होंने रियलाइज किया, तो फिर वो लोग थोड़े टाइम बाद इत्तेफाक से पंडित जी शिखर जी के और वहां पर वो वाले दोनों साधु भी वहां शिखर जी में मिले, तब उन साधु ने बोला कि हाँ आपकी बात सही थी, मूर्छा तो है, मूर्छा के बिना मतलब वस्त्र ग्रहण नहीं होता, मूर्छा नहीं होती। तो ऐसे करके बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेडिक्शन थे, एक जगह आप बोलो कि आप अपरिग्रही हो, एक जगह आप भगवान को बोलो कि वो वीतरागी है, फिर उनको ऊपर से नीचे तक पूरा कपड़ों से ढक दो, डजंट हो, कॉन्ट्रेडिक्शन थे, ये ग्रहित मिथ्यात्व पर सीधे चला जाएगा, ठीक है। अब जो हम आज बात करने वाले हैं वो मिथ्या चारित्र की है, ये पंडित दौलत राम जी ने बहुत शॉर्ट में बहुत गजब के हमें पैरामीटर्स दिए हैं, ठीक है। तीन प्रकार की इन्होंने फैक्टर्स दिए जिनकी बेसिस पर हमको यदि अपने गुरु को ढूंढना है तो उनकी परीक्षा कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट, जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, जिसको फेम चाहिए, जिसको प्रसिद्ध होना है, जैसे कि मैं आपके पास आया और आपने मेरे से नहीं पूछा कुछ भी, ओके, और लेट्स से मैं आपके पास बहुत दिनों तक रुका रहा और आपने मुझसे प्रवचन के लिए नहीं बोला, क्लास के लिए नहीं बोला, और मुझे बुरा लग गया, मीन्स व्हाट डज इट मीन, आई वॉन्ट ख्याति, आई वॉन्ट कि लोग मुझे सुने और सुनकर फिर मेरी प्रशंसा करें, ये ख्याति कहलाती है। इसका इंसिडेंस क्या हुआ था, मतलब मेरे दादाजी का बता रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर गजरथ चल रहे थे, ओके, गजरथ प्रतिष्ठा चल रही थी और बहुत बड़ा मुनिराजों का संघ आया हुआ था। अब वो रोज हमारे घर के सामने से निकलते थे मुनिराज रोज, ओके, और हमारे दादाजी नमस्कार नहीं करते थे, तो एक बार जो आचार्य थे उन्होंने पूछवाया, उनको बहुत परेशानी हुई, तो उन्होंने बोला कि कपूरचंद जी हम लोग रोज निकलते हैं, वो नमस्कार नहीं करते हैं, ये तो गलत बात है। तो फिर समाज से ही कुछ लोग आए और दादाजी के पास गए, तो बोला कि आप मतलब आचार्य श्री कह रहे थे कि आप नमस्कार नहीं करते हो, तो दादाजी ने बोला जो ख्याति लाभ पूजा दी चार, हम उनको नमस्कार क्यों करें, जिसको ये देखने में आ रहा है कि किसने हमें नमस्कार किया किसने नहीं किया, मुनिराज तो नमस्कार में स्तुति में और गालियों में समान रहने वाले हैं, समता को धारण करने वाले हैं, फिर मुनिराजों के पास इतना समय कहाँ से आ गया कि वो ये देखें कि कौन हमें नमस्कार कर रहा है कौन नहीं कर रहा, बराबर। तो ये पहला फैक्टर है, क्योंकि यू नो आपने भी नोटिस किया होगा, सबसे पहली प्रायोरिटी जिसकी रहती है कि उसके पास बेसिक लिविंग हो, मनी हो, पहली क्या है लिविंग हमारे पास, ठीक है हमारी बेसिक, हमारा सब कुछ घर हो जाए, पैसे वगैरह थोड़ी ठीक ठाक हो जाए, आफ्टर दैट एवरीबडी स्टार्ट रनिंग आफ्टर फेम, लाइक हमारी सोसाइटी में कोई हमको जाने, हमारे जहाँ रह रहे हम जाए, हमारी कंपनी में कोई हमको जाने। तो ये जो श्रीमद राजचंद्र जी ने बोला है कि मनुष्य मनुष्यों में से यदि मान को हटा दिया जाए तो मोक्ष यहीं पर होगा। तो मनुष्य गति में मान कषाय की मुख्यता है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी नोन, सब मुझे जाने पहचाने। एक छोटी सी भी अलग चीज हम करते हैं, वी वॉन्टेड, लाइक हम उसको एडवर्टाइज ऐसे करते हैं लाइक वी वर द फर्स्ट वन टू डू इट एवर ऑन दिस अर्थ। तो ये वाली जो मान कषाय है, दैट्स द फर्स्ट फैक्टर टू सी दे, जब जो गुरु के पास आप जा रहे हो, उसका चारित्र आपकी देख रहे हो, वो वाले गुरु वही मुख्य चारित्र के धारे। एंड इफ यू थिंक यू आर वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन एंड यू थिंक आपको अंदर में कहीं चोट पहुंचती है जब आपकी कोई इंसल्ट कर देता है, मतलब आप सही तत्व ज्ञान से नहीं सचे हुए। आपको ख्याति और लाभ चाहिए, पुजारी चाहिए, ठीक है? तो ख्याति मीन्स फेम, लाभ मीन्स सम बेनिफिट। सो इफ आई एम डूइंग समथिंग टू यू, आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग बैक फ्रॉम यू, दैट्स बेनिफिट। मुझे कुछ मिलेगा यार, इनसे इनको मैं बताऊंगा तो ये मुझे कुछ दे देंगे, मुझे कुछ फायदा करा देंगे। एंड पूजादि, लोग मेरे बहुत अप्रिशिएट करें, पूजा मतलब गुणों का इस्तेमाल। ये सारी बातें कोई चाहे, पहला फैक्टर, या कोई इनको चाहे। सी दिस इज गोइंग टू हैपन ऑटोमेटिकली। यदि मैं आज मुनिराज बनता हूं तो ऑटोमेटिकली लोग मुझको नमस्कार तो करने वाले हैं, ऑटोमेटिकली मेरी ख्याति तो होने वाली है ही, वो तो सहज होने वाली है। मैं यदि इसको चाहूं और मुनि दीक्षा सिर्फ इसलिए ग्रहण करूं तो ये ग्रहित मिथ्या की कोटि में चला जाता है, ग्रहित मिथ्या चारित्र, ठीक है? ओके, कब ग्रहित मिथ्या चारित्र बनेगा? जब हम इस प्रेम के लिए धरिकरण विविध विविध देह दाह, धरिकरण धारण कर लेते हैं विविध बहुत सारे टाइप के देह दाह, शरीर को, और अलग अलग हम आग के ऊपर बैठ गए, हम 10-10, 15-15 दिन तक खाना नहीं खा रहे हैं, हम जमीन के अंदर एक गड्ढा बनाकर उसके अंदर चले गए और वहां पर हम एक एक महीने तक है अंदर और ध्यान कर रहे हैं, हम शरीर को क्रश कर रहे हैं। क्यों? जितनी ज्यादा मेरी तपस्या होगी उतना ज्यादा मेरा फेम होगा, लोग मुझे जानेंगे, करेक्ट? तो जो ख्याति लाभ पूजादि को तो चाहता है, क्यों चाहता है? क्योंकि उसको नाम चाहिए। वो कैसे उसको नाम कमाएगा? वो कि वो भैया धर्म का आचरण करेगा और उससे अपना फेम चाहेगा, अरे वो तो ऐसे वो ये करते हैं, वो ऐसे वो ये करते हैं, ठीक है? ये पहला ग्रहित मिथ्या चारित्र का लक्षण है। जैसे कि कई बार हमको भी हो जाता है, हमारे भी भक्ति में बहुत मन लगता है, हमारा पूजा में बहुत मन लगता हो, या फिर हमारा स्वाध्याय में बहुत मन लगता हो, वी काइंड ऑफ स्टार्ट एडवर्टाइजिंग इट। यार पता है मैं तो आजकल इसका स्वाध्याय कर रहा हूँ और बहुत मन लगता है 4-4 घंटे, ठीक है? एंड हमें काइंड ऑफ उसका थोड़ा सा घमंड होने लगता है, मान होने लगता है, राइट? सब सब एकदम बढ़िया चल रहा है, अच्छे से स्वाध्याय होगा। तो व्हेन एज लॉन्ग एज वी आर हैप्पी अबाउट डूइंग स्वाध्याय पूजन भक्ति गुड, द मोमेंट वी स्टार्ट एडवर्टाइजिंग यू नो डिमीनिंग अदर्स, तुम क्यों नहीं करते हो, मैं इतना कर लेता हूँ, तुमसे क्यों नहीं हो रहा है, नहीं तुम करना नहीं चाहते हो, एंड हम दूसरे को इतना नीचा दिखाने लगते हैं, फिर यार इसने आत्मा की बात नहीं सुनी, इसने कुछ नहीं सुना, ठीक है हम बोलते हैं, बट यू शुड नेवर बी यू नो प्राउड ऑफ इट, शुड बी प्रिविलेज्ड, हमको इसको यू नो वी शुड बी हम्बल्ड कि हमको इतनी बड़ी चीज सुनने को इतनी आराम से मिल गई। हमको सर मैं आपको एक बात करना नहीं उससे बताता हूँ, आपने भाव परावर्तन का नाम सुना है?
किसका?
भाव परावर्तन, 5 परावर्तन होते हैं,
परावर्तन
होता है भाव परावर्तन। भाव परावर्तन में क्या होता है, हम एक स्केल बनाते हैं, ठीक है? इसमें हम स्केल में दो एंड्स रखते हैं, एक्सट्रीम एंड्स, एक ये सब मिथ्यात्व का स्केल है, मिथ्या दृष्टि का स्केल, क्योंकि परावर्तन मिथ्या दृष्टि के होते हैं, सम्यक दृष्टि के नहीं होते, ठीक है? तो परावर्तन मिथ्या दृष्टि के होते, स्केल किसका होगा? मिथ्या दृष्टि का। स्केल में 2 एक्सट्रीम्स है, 1 एक्सट्रीम वर्स्ट भाव पॉसिबल, गंदे से गंदा जो भाव पॉसिबल है, ठीक है, गंदे से गंदा, उसमें टेररिज्म के और ये रेप वाले और ये चोरी वाले ये सारे भाव तो कहीं नहीं लगते, बहुत बुरे बुरे गंदे से गंदे भाव, एंड एट अनदर एक्सट्रीम एंड जो मिथ्या दृष्टि को मंदतम हो सकते हैं, जो द्रव्यलिंगी मुनिराज बनेगा वो जो कि द्विव्यक की आयु बांधेगा, वो वाला मंदतम शुभ भाव, ये सारे भाव को हमको स्केल में रखने हैं और ये पूरा स्केल बनाने हैं एक्सट्रीम से लेके माइल्डेस्ट ये वाले भावों का, ठीक है, तीव्र कषाय से लेके मंदतम कषाय पॉसिबल इन अ भूमिका ऑफ अ मिथ्या दृष्टि जी, ठीक है। नाउ व्हाट भाव परावर्तन से तुम आज द्रव्यलिंगी होगी, मान लिया हो तुम, ठीक है, और ऐसा गजब का तप किया है कि सामने उपसर्ग करने वाला एक देव खड़ा हुआ है पूर्व भक्ता बैरी, और वो इतना उपसर्ग कर रहा है, आसपास बचाने वाला कोई नहीं, धर्णेन्द्र आ रहे ना, पद्मावती आ रही है, कोई जीव बचाने आ रहा है, कुछ भी नहीं, एंड आपका ध्यान विचलित नहीं होता, आप क्रोध नहीं करते, एंड आपका मरण होता और आप नौवे ग्रीवे की आयु बांध के नौवे ग्रीवे चले जाते, ठीक है, यू डिड दैट एक्सट्रीम शुभ भाव, तब आप नौवे ग्रीवे गए, यू वर अ जैन मॉन्क, जैन साधु परमेश्वरी थे आप, 28 मूल गुणों का आपने अखंडित पालन किया, जीवों की दया पाली, अब वहां पर क्या बोलते हैं, इतना होने पर भी आपने स्वरूप को नहीं जाना ना, आपने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया जो पहली सीढ़ी थी, फर्स्ट स्टेज थी, तो नाउ देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि आप देवगति में जाके वो सारे काम करो जिनका आपने यहाँ पर बहुत ज्यादा त्याग किया हुआ था, करोगे ही आप, छठवें सातवें गुणस्थान की तो बात तो आप पहले गुणस्थान में थे, बट यू टुक महाव्रत, और देवगति में तो अणुव्रत भी नहीं है, तो आप जो एक बार खाते थे तो आप खाना तो आपके कंट्रोल में रहा नहीं, ऑटोमेटिकली चलेगा, आप पांच इंद्री के विषयों का त्याग करके आए थे, पांच इंद्री विजय का लेकर, अब तो पांच इंद्री के विषयों में ही पूरे टाइम रहना है, तो वहां पर भाव परावर्तन में क्या बोलते हैं कि एक नौवे ग्रीवियक से लौटा हुआ मुनिराज वो कुछ ही भवों के बाद जघन्यतम अपराध करे जिसमें आश्चर्य नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जो मरीची था उसके कथानक में आता है उसने भी जैन दीक्षा ली थी मरीची, ठीक है, बट देन वो भ्रष्ट हो गया जो भी हुआ और 363 मतों की रचना करी। नाउ पहले तीर्थंकर आदिनाथ और आखिरी तीर्थंकर महावीर, महावीर इस मरीची का जी, इनके बीच का टाइम पीरियड कितना है, चौथे काल का टाइम कितना होता है,
अप्रोक्सीमेटली एक कोड़ा कोड़ी सागर,
बराबर एक कोड़ा कोड़ी सागर, एक सागर का परिमाप बहुत ज्यादा है, तो अब त्रस्त पर्याय में हम कितने टाइम तक रह सकते हैं मैक्सिमम,
2000 सागर मैक्सिमम,
तो वन कोड़ा कोड़ी इज बिगर और 2000 सागर इज बिगर,
वन कोड़ा कोड़ी सागर,
तो मतलब वो मारीची का जीव एक कोड़ा कोड़ी सागर तक संसार में उसको रहना है, राइट, वो कितनी बार निगूद गया होगा, वन कोड़ा कोड़ी अपन बेस्ट केस लेते हैं, बेस्ट केस मिनिमम टाइम्स ऑफ निगोडियो दिया होगा, तो वन कोड़ा कोड़ी को 2000 से डिवाइड कर दो, करेक्ट, वन कोड़ा कोड़ी सागर को भी डिवाइड बाय 2000 सागर, वी गेट द मिनिमम टाइम्स ऑफ निगोड, जब वो हर टाइम 2000 सागर की, विच इज नॉट पॉसिबल एवर, इसलिए हर बार 2000 सागर की तरफ पर्याय पूरी पूरी भोगी हो तब तो उसके मिनिमम दैट अमाउंट ऑफ टाइम वी गोइंग टू निगोड एक इंद्रिय, करेक्ट, बट दैट्स नॉट बेस्ट, नेवर पॉसिबल, तो वो भावी तीर्थंकर का जीव और पूर्व में तीर्थंकर का पोता तद्भव मोक्षगामी का पुत्र और खुद जिसने जिन दीक्षा ली थी, बहुत बड़े ज्ञान का धारी था हमारी चीज, बहुत ज्ञानी था, हंसी खेले कोई इतने सारे धर्म चला देना ये बहुत चलती भी चीज था जो भी हुआ, बट आई एम सेइंग कि हमारे प्रेजेंट के चार घंटे स्वाध्याय हमारे फ्यूचर के भावों को बिल्कुल डिसाइड नहीं करता, तो आपके प्रेजेंट भावों को देखकर आप अपने फ्यूचर को बिल्कुल भी प्रिडिक्ट मत करो, बिल्कुल भी, एक श्रेणी से लौटे हुए मुनिराज गिर जाते हैं, मिथ्यात्व में आते हैं और फिर वो गिरकर उनका मरण होता है, फिर जहां भी जाएंगे परंपरा से वह मुनिराज जो श्रेणी चढ़ के गए उपशम श्रेणी, जो 11वें गुण स्थान तक चले गए हैं वो आगे के आने वाले भवों में निगुध में पाए जा सकते हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि भी यदि अधिकतम संसार में रहेगा तो अर्ध पुद्गल परावर्तन तक रहेगा। अर्ध पुद्गल परावर्तन भी बहुत करोड़ों सागर का है, उसमें भी 2000 सागर तक की आप तरफ रह सकते हो ना। तो जो साधी मिथ्या दृष्टि है, जो मुनिराज श्रेणी चढ़कर उतर कर आ गए हैं, वो भी ऐसे ऐसे पाप करते हैं कि वो निगोद का, सातवें नरक का, इन सब का बंद कर लेते हैं। जब इतनी उज्जवल अंतरंग परिणति होने के बाद भी ये वाले कषाय परिणाम हमारे पास दोबारा आ सकते हैं, तो हमारे प्रेजेंट के बहुत ही ज्यादा निचले स्तर के अच्छे भावों को देखकर हमको प्राउड फीलिंग होने लगे, दैट्स अ ग्रही मिथ्या चारित्र रह गया है। क्योंकि कंडक्ट है हमारा, कंडक्ट, वी डिड समथिंग, हमने स्वाध्याय किया एंड दैट्स अ कंडक्ट। हाँ, हम स्वाध्याय वाले, हमारी क्लासिक का पार्ट हो जाती है एकदम अलग, बहुत सारे सेक्शंस बन जाते हैं, राइट। किसी को इससे ही हो जाता है कि हमने हर एक पंच कल्याण अटेंड किया है, हमने हर एक शिविर अटेंड किया। अभी तक कई लोगों को इस चीज का, लकी, तो वो लकी, दे आर लकी है जिन्होंने गुरुदेव श्री को सामने देखा, साक्षात सुना, करेक्ट। बट लाइक बीइंग स्टक ऑन दैट, कि हमने गुरुदेव श्री को देखा और उसके बारे में जो उनकी आंखें एकदम चमक जाती बताते हैं, बट व्हाट गुरुदेव श्री ट्राइड शोइंग यू, जो दिखाने वाले थे वो देखा कि नहीं देखा, उसकी बात कभी वहां पहुंचती नहीं है, क्योंकि हम लोग बाहर में ही इतना अटक जाता है। जब गुरुदेव श्री की समाधि हुई थी, तब वहां पर सोनगढ़ में ही बनी उनकी समाधि, राइट, वहीं पर उनका अंतिम दाह संस्कार हुआ था। तो उसके बाद लोगों ने जो वहां की राख थी वो भर ली थी, आपको पता होगा, लोग अभी भी घरों में रखे हुए हैं थोड़ी थोड़ी सी राख, बराबर, आपको पता ही नहीं, पता पता ही
नहीं
होगा, नहीं पता है। तो
नहीं
गुरुदेव श्री एक तो हाथ में एक लकड़ी रखते थे, राइट,
हाँ, वो
वो
लोग
उनको
चोरी
पता
कर
नहीं आता,
जाते थे, वो
वो दो
पता
तीन बार चोरी हो चुकी थी, ठीक है,
हाँ
बिकॉज लोगों को लगता है कि जादू है तो मेरे पास भी होगी तो मेरे पास भी सब आएगा, वो उससे ही सबको पैसा देते हैं। बैंगलोर के भगवत मल के भंडारी थे वो, वहां पर अटेंड करने के लिए रहे, उस टाइम पंच कल्याणक में रहे शायद, वो शायद नैरोपी गए थे या तो फिर, तो वो गए वहां पर वो रहे, और जब वो उनका शायद बहुत बड़ा लोहे का काम था, किसका काम था नॉट श्योर, एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन फैक्ट से है कि वो जितने टाइम वहां गुरुदेव श्री के पास है तब तक उसका जो मार्केट प्राइस था वो बहुत बढ़ गया, इनका स्टॉक बिजनेस बंद करके गए थे, जितना जब वो वापस लौटे तो उनको इतने का फायदा हुआ, तो लोगों को लगने लगा कि गुरुदेव श्री के पास से पैसा मिलता है ऐसे
हाँ
करके,
वो
बहुत
सुना है, हाँ वो सुना है।
लोगों को। तो ऐसे ही आखिरी में लोगों ने उनकी जो राख थी उसको उठाकर अपने घरों में रखा, और अभी भी कई लोगों घरों में है, मुझे बिलीव के चलो इस समय कुछ मिलेगा, दैट इज ग्रही मिथ्या चारित्र। आप गुरु से और गुरु से प्राप्त ज्ञान से, ज्ञान के अलावा और कुछ प्रयोजन साधना चाहते हैं, वो सब ग्रही मिथ्या चारित्र की कैटेगरी में जाता है। आप ज्ञान से, जैसे कि मैं मंगलायतन में पढ़ा, एंड उस पढ़ने से मैं आत्मा का कल्याण तो नहीं चाहूँ, मैं ये चाहूँ कि चलो मैं सबको पढ़ाऊंगा और अच्छा भैया सब अच्छा पढ़ाएंगे अपन, बहुत एकदम, दिस इज ग्रहित मिथ्या चारित्र दैन, क्योंकि पढ़ाने के लिए ज्ञान नहीं था। जब तीर्थंकर होते हैं, और तीर्थंकर जन्म से ही तीन ज्ञान के धारी, जैसे ही वो अनुव्रत, जैसे ही मुनि दीक्षा ग्रहण करते हैं चार ज्ञान के धारी हो जाते हैं, और जैसे वो मुनिराज तप करते हैं, आहार करते हैं, ये सब करते हैं, तो भी तीर्थंकर मुनिराज एक चीज को भी उपदेश नहीं देते। श्री कृष्ण नारायण थे और जरासिंध, राइट, वो उनका वहां पर कंस, जरासिंध, ये सब इनके शत्रु लोग थे, इनसे बड़ा युद्ध होना था, श्री कृष्ण उनको मारना था, सब लोग भैया सबने सोचा चलो नैमी कुमार से एक बार पूछ ले, तब ये इनके चचेरे भाई तो थे, तो इनसे पूछ ले भैया ये तो अवधि ज्ञानी है, बता देंगे युद्ध में क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो ये लोग नैमी नाथ कुमार के पास आए और पूछा भैया युद्ध में क्या होगा, तो नैमी कुमार कुछ बोले नहीं, लेकिन नहीं बोलते हैं, वो यूज इससे ध्यान नहीं, मतलब कोई उपदेश या ऐसा कुछ करते नहीं है चीज शंकर, बट हाँ वो मंद मुस्कुरा दिए। नैमिनाथ भगवान की बहुत अलग अलग कहानियां यहाँ, कि उनको एक बार बुरा लग गया था टॉन्ट में, तो फिर वो श्री कृष्ण के वहां चले गए थे और वो नागशैया पर बैठकर उन्होंने शंख फूंक दिया था, धनुष की प्रत्यंच चढ़ा दी थी उनको, सत्य मामा की बात कोई बुरी लग गई थी। तो इनकी मतलब आपके यदि कषायों को देखना है तीर्थंकरों की, तो नैमिनाथ भगवान के चरित्र में बहुत मजेदार उसका वर्णन है, ठीक है, मतलब नॉट कषाय कषाय बट बहुत, आप पढ़ना हरिवंश पुराण, तो बहुत सुंदर उसका वर्णन है। तो वो मंद मुस्कुरा दिए तो सब समझ गए चलो अपन जीत जाएंगे, बट तीर्थंकर का वचन से कभी उपदेश जब तक वो केवल ज्ञानी नहीं होते तब तक नहीं होता। तो इतने ज्ञान के धारी जिनके निमित्त से पूरे लोक में धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होने वाली है, उनको किसी को समझाने का विकल्प नहीं आता। देखो जब तक वो तीर्थंकर हैं और छद्मस्त्र हैं, मतलब केवल ज्ञान नहीं हुआ, तब तक तो वो किसी को समझा नहीं रहे, बराबर। तीर्थंकर के जीव का कोई उपदेश नहीं होता जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं होता, और केवल ज्ञान के बाद इच्छा का अभाव है, तो उसके बाद जो भी उपदेश हो रहा है वो तो पुद्गल का काम हो रहा है, शरीर का अपने आप काम होता है, अपने आप वो ऑटोमेटिक है, दिव्य ध्वनि का अतिशय है, बराबर। तो तीर्थंकर का जीव जो जगत में तीर्थ को चला रहा है, उसने कभी दूसरों को समझाने की पढ़ाने की इच्छा ही नहीं करी। 16 कारण भावनाएं उन्होंने भाई थी, वो अलग था, बट जब तक उनके पास इच्छा का राग था तब तक उन्होंने किसी को उपदेश नहीं दिया। और अब केवल ज्ञानी हो गए तो उनके पास राग नहीं बचा कि अब वो किसी को उपदेश, अब भवि भागन वच जोगे वशाय तुम दुनिया, ये होता है, बराबर। जब वो तीर्थंकर इतने ज्ञानी है, उनको यदि किसी को समझाने का भाव नहीं आता, तो इससे प्रत्यक्ष हो जाता है कि ये मार्ग समझाने समझाने का नहीं है, ये मार्ग समझने का है। और यदि इस मार्ग पर आकर हम लोग इसी में लग गए, जैसे कि आजकल ये ट्रेंड चला है कि भैया सब लोग चाहते कि सब दूसरे पढ़े, हमारे मंदिर में सब लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, स्वाध्याय में लोग कैसे बढ़े, सबको एकदम मार्ग मिले, गुरुदेव श्री की सीढ़ी सब सुने, शिविर लगाओ और लोग सुनेंगे, तो एवरीबडी, यदि मैं अभी बोलूंगा कि यहाँ पर शिविर है और इसके लिए दान चाहिए, तो 50 लोग आगे जाएंगे बोलेंगे बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, सबको चलो शिविर होने चाहिए। बट इफ आई आस्क कि आप जो दूसरों को जोड़ना चाहते हो आत्मा को बता के, आप वो वाले आत्मा की आप क्या कर रहे हो, आपका क्या पुरुषार्थ है उसमें? तो वहां पर अपने लिए सब लोग एकदम ऐसे हो जाते हैं, दूसरों को सबको धर्म में लगाना है, खुद को नहीं लगाना। दिस इज ग्रहित मिथ्याचारित्व, मतलब आपके लिए धर्म एक सोसाइटल स्टेटस हो गया, एक सोशल स्टेटस है, समाज में सब लोग स्वाध्याय करते तो हमें भी स्वाध्याय करना है, नहीं करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, या फिर स्वाध्याय करना इज लाइक जैसे कि हम अदर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ऐसे हम आत्मा को पढ़ लेते हैं एक बार, बट जब तक आंतरिक बहिंश्री का वचनामृत है, आंतरिक रुचि नहीं है, तो उसके बिगर का स्वाध्याय कुछ फल नहीं देता। उनसे प्रश्न पूछा कि शास्त्रों का अर्थ क्षयोपशम से होता है कि नहीं होता, मेरे पास बहुत ज्ञान है तो मैं शास्त्रों का अर्थ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? बहिश्री ने बोला नहीं, शास्त्रों का अर्थ क्षयोपशम से नहीं, रुचि से होता है। अल्प ज्ञान भी हो लेकिन ज्ञानी का आशय समझता हो तो वह तो तुष्माश भिन्नम, उतना समझ के केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है, और बहुत ज्ञान हो तो अंगों का पाठी होता है। अब अभ्यसेन ने अंग पढ़े थे लेकिन फिर भी आत्मा को नहीं जानने से कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाता, करेक्ट। तो मिथ्याचारित्र यहाँ पर पंडित दौलतराम जी क्या बोल रहे हैं, आप धर्म से कुछ और एनी अदर एक्टिविटी वांट टू कंडक्ट, आप उसको लेना चाहते हो, दैट वुड बी योर मिथ्याचारित्र। कुछ भी आपको ख्याति चाहिए, मतलब ख्याति मतलब ऐसी प्रसिद्धि, कोई भी, आप किसी भी टाइप की, आपको अपने स्वाध्याय की प्रशंसा सुननी है, आपको अपने पूजन की सुननी है, आप कितना अच्छा बोलते हो, सुनते हो, बैठते हो, दान देते हो, क्या करते हो, यदि आप इससे अपनी ख्याति चाहते हो, दिस इज ग्रहित मिथ्याचारित्र। जो पैसा देकर अपन लोग नाम लिखवा देते हैं ना मंदिरों में, एक्चुअली दैट डजंट कम इन दान की कैटेगरी। हाँ आपकी थोड़ी बहुत मंदकशाय हुई है, बट दैट्स अ ट्रेड, दैट्स अ ट्रेड, लिटरल ट्रेड। आपने पैसा देकर जैसे कोई चीज खरीदते हो, ऐसे यू बॉट अ नेम प्लेट और आपने वो नेम प्लेट लगवा दी, इट्स अ ट्रांजैक्शन, इट्स नॉट दान। वो दान
लोग,
को भी आप धर्म
अनुभव जी, बहुत लोग वैसे टैक्स रिसीट मिले उसके लिए भी
बिल्कुल
बहुत।
बिल्कुल बिल्कुल, उसका निश्चित रत्न परमेश आपका चार में भी ऐसी बातें आती हैं, पंडित सदा सुख दास जी की टीका में दान के स्वरूप में वो बताते ये मार्ग नहीं है। दान तो इसका था कि आपको अपने धन से निवृत्ति और आपको उसका घमंड घटे। आप तो दान दे के अपने धन का घमंड दिखाना चाहते हो, हमारे पास इतना पैसा है। वो तो आपके धन से आपकी वो ममता हटे उसके लिए था ना, कि आपके इतना कषाय मंदी की हमें इसकी जरूरत नहीं है, छोड़ो। अब तो दान देकर हम ये दिखा रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, ये तो उल्टा हो गया। तो अधर्म और ज्यादा पाप बंद होगा उससे,
अपनी ख्याति इसमें आ गई ना, ख्याति
ग्रहित मिथ्या चारित्र है। हम बोलते कि हमारा षट कर्म है कि भैया दान हमें रोज करना आवश्यक है, बट दैट आवश्यक इज नाउ टोटली गोइंग इन ग्रहित मिथ्या चारित्र, अग्रहित नहीं। क्योंकि आप जब त्रियंश में होगे तब आपके पास पैसे नहीं थे तो आप दान नहीं करते थे वहां पर, तो वहां पर आपको ये वाला ग्रहित नहीं होता था, अग्रहित वाला जो चारित्र होता था वो होता होगा धन संबंधी। बट अब मनुष्य गति में यू हैव सम ग्रीन नोट्स, आप चाहे तो आपके पास है पैसे, यू वॉन्ट टू फ्लॉन्ट इट लिटरली, देन ये ग्रहित मिथ्या चारित्र, क्योंकि आप ये धर्म के नाम पर कर रहे हो। हाँ, आप बाहर जाकर किसी गरीब को खाना खिलाओ और फिर आप दो, ठीक है, आप उसमें धर्म का आडंबर नहीं कर रहे ना, चैरिटी यू आर डूइंग लिटरली, दैट्स ओके। बट व्हेन यू डू इट लेबलिंग इट अंडर द लेबल ऑफ अ रिलीजियन, कि भैया मैं धर्म के लिए कर रहा हूँ, इससे मुझे कुछ लाभ होगा, ये ग्रहित मिथ्या चारित्र, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये वाली लाइन जो सेकेंड लाइन है, ये एकदम एकदम सिद्धांत और ये हम लोग के जहन में एकदम यू नो जैसे पत्थरों में चीजें उकेरी जाती है, तो हमारे अंदर ये एकदम इम्प्रिंटेड होनी चाहिए। आत्मा और अनात्मा, स्व और पर, मैं और पर द्रव्य, आत्मा यानी कि मैं, अनात्मा मतलब ही शरीर, बाहर के सारे द्रव्य, हर एक आत्मा बाहर का, तो आत्मा अनात्मा इनके ज्ञानहीन, इनका ज्ञान मतलब सम्य ज्ञान, मतलब भेद विज्ञान। आत्मा और अनात्मा का सच्चा ज्ञान क्या है कि आत्मा अलग है, अनात्मा अलग है, मैं अलग हूं पर अलग है। आत्म अनात्म के ज्ञान ही जे जे करनी, जो जो करोगे, तन करण छीन, जिससे तन छीन होता हो, मतलब धर्म तन करण छीन से नॉर्मल है, जो जो भी आपकी क्रियाएं आत्मा और अनात्मा के ज्ञान के बिना, भेद विज्ञान के बिना है, और आप क्रियाओं को धर्म नाम देते हो, वो वाली क्रियाओं को, वो सारी क्रियाएं ग्रहित मिथ्या चारित्र। लेकिन बहुत ज्यादा गंभीर है ये, ठीक है, क्या, किसके बिना, भेद विज्ञान के बिना। किसका भेद विज्ञान, आत्मा और अनात्मा का, स्व और पर का, मेरा और मुझसे पर जितने भी भाव है उनका, इनका भेद विज्ञान यदि ये हट जाए, ये प्रेजेंट नहीं हो, दो चीजें भेद विज्ञान में, एक तो भेद विज्ञान की एक्चुअल उपलब्धि और एक भेद विज्ञान का पुरुषार्थ। उपलब्धि सम्यक दर्शन पर होती है, पुरुषार्थ उसके पहले स्टार्ट हो जाता है, राइट। ये भेद विज्ञान के बिना की जितनी भी धर्म की क्रियाएं हैं जिनमें हम संतुष्ट होते हैं, तन करण छीन, आपने शरीर को क्रश कर लिया और आपको लगा हाँ भैया हो गया धर्म, आपने कुछ अपना टाइम वहां पर दे दिया, इन यू थिंक ओके ये हो गया भैया, आज अच्छा काम हो गया। ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये सब किसके लेबल के अंदर जाएंगी, ग्रहित मिथ्या चारित्र के अंदर। अपन ने कुछ दिन पहले शायद इसी पर ही एक डिस्कशन किया था, और हम लोगों ने नमोकार मंत्र और भक्तांबर ऐसे सारे पाठों की मुख्यता जानी थी, इन सबसे यू नो भक्तांबर को पढ़ने से, नमोकार मंत्र को पढ़ने से, सब रिली मंत्र है और इनसे निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है बराबर। अब इसमें ग्रहित मिथ्यात्व क्या होगा, ग्रहित मिथ्या सूर्य
पढ़ने से हमें लाभ होता
है। भक्तांबर का पाठ तो रोज कर रहे हैं, नमोकार मंत्र तो रोज एकदम जाप माला पे मालाएं चल रही हैं, लेकिन मैं कौन हूँ और ये शरीर कौन है? जिस शरीर के रोग को हटाने के लिए भक्तांबर का पाठ रखा गया है वो शरीर मुझसे भिन्न है, ये वाली बात नहीं आएगी तो वो सीधे ग्रहित मिथ्या की कैटेगरी में चला जाएगा सीधा। और उसका फल क्या है? उसका फल जो पुण्य बंध है वो तो है ही, साथ में तीव्र दर्शनावर्णी कर्म का बंध है उसमें, दर्शनावर्णी यानी मिथ्यात्व का बंध। ठीक है, इसलिए बार बार अभी ये दौलत राम जी बोलेंगे अगली 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 ही 15वें छंद पर ये बोलेंगे, भैया इसलिए तुम सारी बातों को एक तरफ रखो और आत्मा को जानो जल्दी से, आत्मा को जानो, आत्मा को नहीं जानोगे और बाकी जो कुछ करते रहोगे तब तक अपने आप को मूर्ख बना रहे हो, वहां पर मिथ्यात्वी चलने वाला है। ओके, देखो तीन चीजें हो गई, हम वापस रिवाइज कर रहे हैं, ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान और ग्रहित मिथ्या चारित्र। इन तीनों के दो फैक्टर किए हमने, एक तो हम जब सामने देव शास्त्र और गुरु को जज करते हैं तो ये तीन फैक्टर लगते हैं, ग्रहित मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान, और एक जब हम अपनी परिणति को देखते हैं तो ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या चारित्र चलता है। ठीक है, तो बाहर में ऐसे परिग्रही देवों को मानना ये ग्रहित मिथ्या दर्शन है, ये तो बाहर वाला हो गया, और अपने में अपने ही भगवानों को, महावीर भगवान को सुख देने वाला मान लेना, ये हमारा सच्चे मार्ग में आकर भी ग्रहित मिथ्या दर्शन हो गया। अन्य धर्मों के ग्रंथों को पढ़ना और अलग अलग अभिप्राय मिथ्याय करना सच्चे,
आपकी आवाज वापस ब्रेक होती है, सुनाई नहीं देता।
हेलो, इट्स फाइन नाउ?
या
यस,
ओके। आई थिंक वो वाईफाई भी फ्लक्चुएट करता है, थोड़ी टाइम के लिए वाईफाई में प्रॉब्लम आती है, आई डोंट नो। बाय द वे व्हेन आई से कि चलो मैं दो मिनट रुक के देखता हूँ, तब तक मैं कुछ करता नहीं हूँ, ओके, वो अपने आप से ही हो जाता है। सो
अभी यहाँ कहा मिथ्या चारित्र मिथ्या,
एक्चुअली ऐसे बहुत सारे डाउट बहुत जल्दी जल्दी यानी कि बन जाते हैं। क्या हुआ, एक व्यक्ति ने उसका बहुत ही सिर दर्द देता था, ठीक है, तो वो जब भी लिटरली जब भी वो डमोकार मंत्री जाप दे लेता था ना तो उसका सही हो जाता था। एक्चुअली इट हैपेंड, ओके, वो उसके साथ होता, मतलब आई नो हिम एंड ही टोल्ड, ठीक है। सो नाउ एनीथिंग दैट हैपेंस ही स्टार्ट्स डूइंग नमोकार मंत्र, ठीक है। नाउ वो नमोकार मंत्र पढ़ता दैट गुड थिंग, उसको हर टाइम पर भगवान याद आते हैं, बट नाउ इट हैज लिटरली बिकम मिथ्या चारित्र, क्योंकि अभी भी उसकी समाधि का भी समय आएगा और भेद विज्ञान का भी समय आएगा जब उसका शरीर चलेगा, तो ही विल रिमेम्बर नमोकार मंत्र बिकॉज ही नोज कि उससे हमारा दर्द कम हो जाएगा, बट ही विल नेवर रियलाइज कि दर्द आत्मा में नहीं होता, सॉरी, ही विल नेवर रियलाइज कि दर्द आत्मा में नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि जैसी दर्द होना है वैसी वाली मेडिसिन है नमोकार मंत्र की, राइट। तो वो भेद विज्ञान में कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा, कभी नहीं बढ़ पाएगा। इसके लिए ये ग्रहित मिथ्या चारित्र जो हमारे धर्म के अंदर हम बना लेते हैं, ग्रहित मिथ्या दर्शन हमारे धर्म के अंदर जो हम बना लेते हैं, दैट्स फार मोर डेंजरस देन जो अलग में बना लेते हैं। एंड भाव दीपिका में बोला, कुदेव कुगुरु कुधर्म इनके समक्ष जो दर्शनावर्णी कर्म बंधता है उससे ज्यादा तीव्र जाति का दर्शनावर्णी कर्म सच्चे देव शास्त्र गुरु में कुदेव की कल्पना करने से बनता है। एक तो आप रेगिस्तान में प्यासे हो और एक आप नदी में आके प्यासे रहे, तो दोनों में डिफरेंस है ना, वहां तो पानी नहीं था, यू डिडंट फाइंड इट, ठीक है वो सिचुएशन थी, अब तो सामने पानी है एंड यू आर नॉट ड्रिंकिंग इट, यूर मुंह एकदम एकदम आप पागल हो। ऐसे सामने सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले, उनके शास्त्र मिले, उनकी वाणी मिली एंड इवन आफ्टर दैट वी आर नॉट डूइंग व्हाट वी हैव टू डू, देन हम लोग तो पानी के अंदर आके प्यासे हो गए, तो हमारा दर्शनावर्णी कर्म तीव्र बंधेगा। ठीक है, तो ये आत्म अनात्म के ज्ञान ही, मतलब जब तक वेद विज्ञान नहीं है तब तक आप जो कुछ भी धर्म मानकर कर रहे हो दैट वुड लिटरली फॉल इन ग्रहित मिथ्या चारित्र। ओके, तो हम उसमें कोई भी क्रियाएं ले सकते हैं, कोई भी क्रियाएं लिस्टली, यदि हम उसमें धर्म मान, जैसे बहिष्णी से पूछते थे तो वो उनका एक वचनामृत आता है कि अभ्यास तो चलता है शास्त्र का लेकिन काम तो कुछ दूसरा ही करना है, आपने सुना होगा काम तो कुछ दूसरा ही करना है, मतलब मार्ग ये नहीं है जो ग्रंथ पढ़ना, तत्व चर्चा करना, साधर्मियों के बीच करना, दिस इज ऑल, ये होगा, ये सब होगा, दैट इट हैपेंस, बट अल्टीमेटली करना तो कुछ अंदर प्रज्ञा क्षेणी से भेद करना है स्वद्रव्य और परद्रव्य में। और यदि हमको इस बाहर में ही मजा आने लगे तो ये मजा जो है ये ग्रहित मिथ्या चारित्र का टैग कहलाता है, क्योंकि ये हमको आगे बढ़ने के लिए बाधक है। ठीक है, ग्रहित मिथ्या चारित्र समझ में आया। सबसे पहला पैरामीटर तो है आपको अंदर आकलन करना है कि आप इस स्वाध्याय कर रहे हो सो यू फील प्राउड, और आप ये किसको अपने लिए कर रहे हो, दिखाने के लिए कर रहे हो क्या। आप नोटिस करना मंदिर में कोई नहीं हो और दर्शन करते हैं हम, और मंदिर में बहुत सारे लोग हो तब हम दर्शन करते हैं, हमारे पूरे दर्शन करने की स्टाइल बदल जाती है। नोटिस इसमें सारे लोग देख रहे हैं तो हम अलग तरीके से दर्शन करते हैं, कोई नहीं देखता है तो हम जल्दी जल्दी भी कर लेते हैं, तो लाइक समझ नहीं आता कि हम दिखाने के लिए दर्शन कर रहे हैं कि हमको भगवान की सच में महिमा है। ऐसे अलग अलग तरीके से हमको खुद का आकलन करना पड़ेगा कि हम कहाँ पर ग्रहित मिथ्या दर्शन पुष्ट कर रहे हैं, कहाँ पर ग्रहित मिथ्या ज्ञान हमारे चल रहा है, और कहाँ पर हमारी ऐसे छोटी छोटी चीजों में मिथ्या कंडक्ट रॉन्ग कंडक्ट ग्रहित मिथ्या चारित्र को ग्रहण कर रहे हैं। अग्रहित मिथ्या चारित्र क्या था? अग्रहित मिथ्या चारित्र तो ये कि पुण्य के उदय में मजा आने लगता है, पाप के उदय में दुखी होने लगते हैं, तो ये मजा आने, ये तो नेचुरली ये वाला कंडक्ट अपने आप चलता है। इसमें ग्रहित क्या हो गया कि अभी जो स्वाध्याय की पुण्य की क्रिया है ना, ये वाली करेंगे तो अच्छा होगा। पहले जब तक हम अग्रहित मिथ्या दृष्टि से हम जनरलाइज थे, अच्छा करो बुरा मत करो, दैट वॉज अवर अग्रहित मिथ्या। नाउ ये वाला अच्छा करो, ये वाला अच्छा नहीं करो, ये हमारा ग्रहित मिथ्या चारित्र हो गया। ओके, जो जो क्रियाएं हैं स्वामी कार्तिकेय ने कार्तिकेय अनुपेक्षा में गाथा लिखी, जो लोग आप लोग परिषद में उपवास करते कि नहीं करते, एकासन उपवास, हेलो मानस, मानस उपवास करते हो आप परिषद में? नहीं, फास्ट
नहीं,
एकासन
नहीं।
ओके, समीर रिजोल एनी वन ऑफ यू? Do it. What do you do? Ekasana or upvas?
We do ekasana sometimes.
What? So tell me. अच्छा कोई upvas करता है यहाँ पर? Anyone? Volunteer?
नहीं, I can't do upvas.
One day, not all days, not all 10 days, I'm asking.
No, even one day, I can't.
Okay, Ekasan kaun karta hai?
Ekasan.
Chai peete hai? Chai peene se hai kya?
नहीं नहीं कुछ भी बस एक बार खाने को। I just want to know when you do Ekasan, what all you do, what is your schedule of the day? आप पूरे दिन क्या करते हैं काफी देर, मतलब इन दैट खाने का टाइम, दैट यू आर नॉट ईटिंग नाउ राइट, लाइक आप एक बार ही खाओगे सेकेंड टाइम जो शाम का खाने का यू आर नॉट ईटिंग दैट टाइम व्हाट डू यू डू एट दैट टाइम
प्रतिक्रमण
एंड व्हाट एल्स बाकी पूरे
थोड़ा सा स्वाध्याय हो सके तो
अब मैं आपको रियल स्टोरी यहाँ की बताता हूँ क्या होता है यहाँ पर लोग उपवास करते हैं ठीक है कुछ नहीं खाते थे एंड व्हाट दे डू जस्ट लाइ डाउन यस तो एंजियोटासिम करते हैं बच्चे वो टीवी में लगे रहते हैं जिन पर या कुछ और इधर उधर घूमते हैं तो जस्ट टू डाइवर्ट देयर माइंड स्वामी कार्तिकेय ने गाथा लिखी उन्होंने बोला ये उपवास आत्मा को समझने के लिए है हमारे पास टाइम नहीं था तो हमने टाइम काट कर खाना काट कर हमने टाइम निकाला कि चलो हम तत्व चिंतन करेंगे और जो लोग उपवास तो ले लेते हैं लेकिन स्वरूप के ध्यान में नहीं बैठते आत्मा के चिंतन में नहीं बैठते भेद विज्ञान में नहीं बैठते वो लोग आत्मघात करते हैं सुसाइड नॉट ईटिंग इज नॉट गिविंग फूड टू दिस बॉडी नॉट गिविंग फूड टू दिस बॉडी इज मेकिंग इट वीक मेकिंग इट वीक फॉर नो रीजन इज अ सुसाइड सिक्वेंशियल सुसाइड है ना उसकी मूल गाथा है मैं आपको गाथा भी कोट करके बताऊंगा नंबर मुझे याद है बट उसने लिटरली ये बोला कि यदि आप उपवास आदि करते हो तो पहले समझ लो आप क्यों कर रहे हो और यदि आप समझे बिना कर रहे हो तो फर्स्ट थिंग दैट इज नॉट उपवास दैट इज सुसाइड एंड उसका जैन दर्शन में कोई जगह नहीं है कोई स्थान नहीं है जैन दर्शन डजंट प्रमोट दैट
गुरुदेव उसको लांगण बोलते थे
हाँ लांगण लांगण बोलते थे बराबर नहीं उससे उल्टा पाप बंद होता है उन्होंने आचार्य ने सीधे सीधे लिखा कि इससे तीव्र पाप बंद होता है पुण्य बंद बिल्कुल नहीं होता अब बेचारा आदमी पुण्य कमाने के लिए तो खाना छोड़कर बैठा है और उसको पता पड़े उसमें पाप होता है तो फिर उसको ये ग्रहित मिथ्या चारित्र है क्योंकि बिकॉज यू डोंट नो द रीजन बिहाइंड आप क्यों कर रहे हो ये सब करेक्ट देखो ये वाला मार्ग एकदम तलवार की धार पर चलने जैसा है आप थोड़े इधर उधर हुए तो कर्म एकदम बैठे हुए हैं और वो तुरंत अटैच होते हैं और जैसे आप धर्म के नाम पर चलते हो वैसे धर्म के नाम पर तो और एक्सट्रीम कर्म बनते हैं जैसे आप धर्म बोलकर कर रहे हो कुछ भी वो आपकी मान्यता से सीधे स्ट्राइक करता है राइट तो हमको बहुत ज्यादा संभलने की जरूरत है कहीं हम किसी क्रिया में संतुष्ट तो नहीं हो गए हमने किसी क्रिया का अतिरेक तो नहीं कर दिया ये मानकर हम ग्रहित और अग्रहित से बहुत दूर रहे तो हम इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं श्रीमद राजचंद जी की एक गाथा है जहां जहां जे जे योग्य छे तहां तहां समझो भाई जो जहां पर योग्य है डुएबल है शुड बी डन है वी शुड वहां पर वो ही करना चाहिए हम खाने के टाइम कुछ भी मतलब कोई बहुत बीमार हो मुझसे जाके नहीं बोल सकते भैया आत्मा और शरीर तो भिन्न भिन्न है तो मैं चाय का दुख ऐसा आप नहीं बोल सकते वो वहां पर हॉस्पिटल में एडमिट है वहां पर आप उससे सीधे भेद विज्ञान की बातें करोगे यार उसको देख के तो किसी दूसरे को भी दया आ जाए वो इतनी पीड़ा में है और आप उसको ऐसी रूखी बातें बोल दो ऐसा नहीं होता जहां जहां जो जो योग्य है हमको किसी भी चीज का अतिरेक नहीं करना है तो हमें भेद विज्ञान का सतत अभ्यास रखना है उसके बिना सब ग्रहित विचारित ठीक है अब आई वॉन्टेड टू आस्क हमें एग्जाम कब रखना है इसका आप लोग के समर वेकेशन या फिर जो भी ब्रेक होते हैं समर ब्रेक वो कब से है समर से क्या होगा अभी सचिन जी एग्जाम हम कब रख रहे हैं
समर तो वी हैड फॉर अ फ्यू वीक्स
अनुभव जी एग्जाम कभी भी रख सकते हैं आप देख लीजिए इस वीक में मतलब कमिंग वीक में
ओके ओके क्योंकि हमने गुरुदेव श्री के प्रवचन सुने नहीं है लास्ट की कुछ गाथाओं पर इसके आई वाज वंडरिंग
ओके
तो या तो फिर मैं उनको सुनकर उनके जो मेन मेन पॉइंट्स उनके नोट्स बनाकर आपको दूं और आई गिव यू एज इट लाइक आप लोग घर पर सुने व्हाट हाउ वुड वी डू इट
नहीं अनुभव जी सुन लेते हैं क्योंकि मतलब
एग्जाम
अगर उनके नोट्स लिखेंगे तो प्रोबेबली पीपल मे नॉट लिसन टू इट, तो मेरे ख्याल से तो वो सुन लेते एक बार और फिर एग्जाम रख लेते हैं।
वो एग्जाम की मतलब ठीक है, तो अपना एक लास्ट वाला ही बचा है तो लेट्स बट सचिन जी वो दो प्रवचन है तो लाइक वन एंड हाफ बिकॉज एक तो प्रवचन है वो हमने आधा सुना हुआ है, नेक्स्ट प्रवचन इस पूरा आखिरी वाला प्रवचन पूरा बचा हुआ है तो लाइक तो फिर उसके लिए भी हम एवरी टाइम सुनेंगे तो लेकिन सब अपने घर पर सुने एंड देन एवरीबॉडी टेक्स नोट।
या दैट्स आल्सो फाइन
तो लेट्स
हाँ तो इन कमिंग वीक्स यू कैन यू नो वी कैन आस्क एवरीवन टू लिसन टू दोस प्रवचन एंड देन यू नो आप देख लीजिए नेक्स्ट वीक में कभी भी या तो संडे को अगले संडे को एग्जाम रख लेंगे जैसे भी आपको एंड सुनने आई थिंक यू नो सब लोग प्रवचन सुन लेंगे उनके बाद उनको कोई क्वेश्चंस भी हो तो दे कैन यू नो ऑलवेज सेंड इट टू मी एंड आई कैन कंसोलिडेट इट, तो वो भी क्लैरिफिकेशन भी यू नो आपसे ले लेंगे बिफोर यू नो वी टेक अप द टेस्ट।
हमारा 15th वाला छंद भी अभी नहीं हुआ आखिरी वाला, वैसे सिंपल है उसमें ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट क्लास रखनी है कि नेक्स्ट क्लास में एग्जाम रखना है वो भी वंडरिंग अबाउट दैट।
सॉरी इनमोजी क्या बोला आपने?
नेक्स्ट संडे को क्लास रखें एक और क्लास में हम एक कंक्लूडिंग जिसमें पूरा समराइज करें कि डायरेक्टली एग्जाम रखें। आई वाज आस्किंग दैट
रखना है तो एक रख सकते हैं अनुभव जी, आई मीन लेट्स आई विल चेक विद एवरीवन बट आई थिंक शुड
व्हाट आई विल डू मैं बस लास्ट वाला छंद अभी पढ़ के आपको एक लाइन में बताता हूँ। आई विल सेंड द नोट्स आप लोग वो पढ़िए जो डाउट्स हैं देन टेल मी, उसमें सारे वो भी रहेंगे और आप लोग वो प्रवचन दो सुनने हैं सबको।
हाँ एक मिनट समीर रिजुल मानस सब लोग है ना?
हाँ जी
हाँ जी।
एक एक नियति आंटी को एक अनाउंसमेंट करना था तो एक सेकंड।
जय जिनेंद्र।
हाँ अनुभव जी मुझे आपको बताना है कि शिविर में बच्चे बैठे थे अपने दिया मानस समीर रुजुल समय जी का विधान हुआ था यहाँ 5 दिन में।
हाँ हाँ
तो पूरा सब ने अटेंड किया है, हम पेरेंट्स का कुछ बोले नहीं उनको, ऑफकोर्स आते थे टाइम पे पूजा के लिए लेकिन अपने आप समय सार के पूरा विधान उन्होंने अटेंड किया है यहाँ जो शिखर हाँ। जी में होने वाला है।
ओके
और दादा के प्रवचन में बैठे थे लेकिन ऑफकोर्स थोड़ा समझ में नहीं आया है लेकिन दिया है श्रुति है जो आई मीन श्रुति की लड़की श्रेया और निशिता हाँ। के लड़की है वो तीनों बैठे थे दादा के प्रवचन में और हाँ। जो शब्द उनको आता था अपनी पाठशाला में
हाँ।
मतलब जो सुने हैं या समझे हैं उनका हाँ। लिस्ट लिखा है तो अभी मैं उनको टाइप करने को बोलने वाली हूँ और आपको हाँ। भेजेंगे और श्रेया भेजेगी वीपी शाह जी को।
ओके
तो आपको थोड़ा रिव्यू करना है तो कर लेना क्योंकि बैठे थे दादा के प्रोजेक्ट में ये स्टूडेंट और मानस समीर रुजुल आई थिंक संजीव जी एंड विपिन जी उनके प्रवचन भी सुनते थे।
हाँ हाँ
मतलब मुझे क्या बताना है कि अपने आप ये बच्चे आगे आए हैं इस बार लास्ट ईयर मुझे मालूम था हमें थोड़ा बोलना पड़ता था लेकिन अपने आप अभी क्या है कि ये सब जिनको अपनी मालूम है कि क्या आगे करना है तो सब लोग बैठे थे और मुझे उसका गर्व है क्योंकि पाठशाला के हिसाब से उनको इतनी महिमा आई है जिनवाणी की। और आपको भी श्रेय जाते हैं और दूसरे टीचर्स को भी जाते हैं।
बहुत मतलब बहुत अच्छा, वो शिविर भी बहुत अच्छा, मैंने पिक्स देखे शिविर के।
हाँ थी बहुत अच्छी, और अपने बच्चे बैठे तो अपने को भी गर्व होता है यहाँ। हाँ
ओके, तो वो नोट्स आप लोगों ने जो भी नोट्स बनाए ना एक बार मुझे भेजेगा, मुझे बहुत खुशी होगी पढ़कर।
हाँ तो अभी मैंने बच्चों को बोला नहीं है,
डोंट टाइप इट, जो भी है जो जिसमें भी लिखा है उसके जस्ट स्नैपशॉट विल डू, तो फोटोज लेके भी दे देंगे ना, तो दैट विल डू।
अच्छा हाँ, तो हमें बोल दूंगी। और मानस रुजुल समीर आप यहाँ है तो आप एटलीस्ट नरेशन भेज सकते कि क्या अपना अनुभव था, क्या सुना, कुछ समझ में नहीं आया, वो भी आप अनुभव को इंग्लिश या हिंदी में लिखना है, जैसे भी हाथ से भी लिख के भेज देना, या सचिन जी को भेजना और सचिन जी भेज देंगे टीचर को।
हाँ जी
हाँ, और अगले साल हम वो उसकी भी एग्जाम्स लेंगे, ये छेडाला की क्लास में उनकी भी हम थोड़े क्वेश्चंस रखेंगे, अभी शिविर में क्या चलता है उसके बारे में।
ओके
जय
श्री भैया। So let's keep exam on the next Sunday and आप लोग अपने नोट्स भी भेज दीजिएगा जो भी है, छैडाला की जो इस बार के प्रवचन के नोट्स हैं, ये सब नोट्स हैं, ये मैं आपको भेज दूंगा, आपको आज या कल में मिल जाएंगे, आधे तैयार है आधे बनाने बाकी आखिरी के, और देन वील हैव एग्जाम एंड आफ्टर दैट जो हमारा आखिरी छंद रह गया हम उसको कंक्लूजन में फिर जब हम रिज्यूम करेंगे तब फिर स्टार्ट करेंगे, तो पूरा हमारा रिविजन हो जाएगा सेकेंड हाल का। ठीक है ओके, एनी क्वेश्चंस प्लीज राइट बैक टू मी, और आप मुझसे कभी भी कॉल करके भी पूछ सकते हैं कभी भी कुछ भी डाउट्स हो। ठीक है अभी के लिए रिमाइंडर छुट्टी करते हैं, बहुत टाइम हो गया आप सबका। क्या वाणी के ज्ञान से निकालो ओ वाणी मस्तक में बता देते हैं, नौ बार डम खाना।